नमस्कार भारत, तारीख 8 जुलाई दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। ग्रीस को मिली एक और मोहलत, गुरुवार तक प्रस्ताव पेश करें।
The situation is really critical and unfortunately we can't...
पाकिस्तान में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान के बीच गुपचुप बातचीत। राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक की जगह जन गण मंगलदायक होना चाहिए। राजस्थान विश्वविद्यालय ने बांटी 25 साल बाद डिग्रियां।
हम तो भूल गए थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा हमें। लेकिन अब भी मिल रहा है तो बच्चे देखेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। 1993 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया था।
करेंगे अखबारों की समीक्षा और खबरें विंबलडन से भी होंगी, लेकिन पहले थोड़ा सा ठहरेंगे और सुनेंगे बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, प्रगति सक्सेना से। ब्रसेल्स में यूरोजोन के नेताओं की बैठक में ग्रीस को कर्ज संकट से उबरने के लिए नए प्रस्ताव पेश करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है, ताकि कर्जदाताओं के साथ उसका एक निश्चित समझौता हो जाए। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने पत्रकारों को बताया कि अगर ग्रीस के सुझाव संतोषजनक माने गए तो रविवार को उन्हें यूरोपीय संघ की बैठक के सामने रखा जाएगा। चांसलर मर्केल ने कहा कि हाल के दिनों में ग्रीस संकट की स्थिति बदतर ही हुई है। यूरोजोन के नेता ग्रीस के जनमत संग्रह का आदर करते हैं, लेकिन यूरोजोन के 18 सदस्य देशों की जिम्मेदारी का भी आदर होना चाहिए। यमन में दो कार बम विस्फोटों में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। एक विस्फोट अल बायदा शहर में हुआ जिसमें 4 लोग मारे गए। दूसरा विस्फोट राजधानी सना में एक शिया मस्जिद के बाहर हुआ जिसमें कम से कम 1 व्यक्ति मारा गया है और 5 लोग घायल हो गए हैं। चरमपंथी गुट इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने आज व्हाइट हाउस में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख से मुलाकात की है। 20 साल पहले दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने के बाद दोनों देशों के नेताओं की ऐसी पहली मुलाकात थी। राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि राजनीतिक विचारधारा अलग होने के बावजूद दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ रहा है।
Obviously, there has been a difficult history between our two countries in the 20th century.
ये तो जाहिर है कि 20वीं सदी में दोनों देशों के बीच रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं और दोनों देशों की राजनीतिक विचारधारा और व्यवस्था में भी काफी अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के नेताओं के प्रयासों की वजह से हमारे बीच एक रचनात्मक संबंध विकसित हुआ है जो परस्पर सम्मान पर आधारित है और जिससे दोनों देशों के लोगों को फायदा हुआ है। ये थे राष्ट्रपति ओबामा के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज जहाज रानी कंपनी कार्निवल कॉर्प का कहना है कि उसे क्यूबा से मायामी तक समुद्री यात्रा ऑफर करने के लिए अमरीकी सरकार की स्वीकृति मिल गई है। कंपनी के मुताबिक उसे अभी क्यूबा से मंजूरी मिलना बाकी है, लेकिन ये यात्रा अगले साल से शुरू की जा सकती है। पिछले दिसंबर में ही अमरीका और क्यूबा ने अपने संबंधों में सुधार लाने की बात की थी। तब से अमरीकियों को सांस्कृतिक या मानवीय कामों के लिए क्यूबा जाने की अनुमति मिल गई थी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नवनिर्वाचित वामपंथी परिषद ने घोषणा की है कि वो उन अनेक मार्गों के नाम बदल देगी जिनका नामकरण पूर्व सैन्य शासक जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको की स्मृति में किया गया था। पिछले वर्षों में जनरल फ्रांको के शासनकाल के प्रतीक चिन्हों को बदलने का दक्षिणपंथी राजनेता विरोध करते आए हैं। मैड्रिड की नई मेयर मैनुएला कारमेना पूर्व कम्युनिस्ट और फ्रांको विरोधी कार्यकर्ता भी रही हैं। नाइजीरिया के राष्ट्रपति मोहम्मद बुहारी ने देश के दिवालिया हुए राज्यों की स्थिति सुधारने के लिए 2 अरब डॉलर के पैकेज को स्वीकृति दी है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। जैसा कि अभी अभी आपने समाचारों में प्रगति सक्सेना से सुना, ग्रीस आज भी अपने कर्ज संकट से निपटने के लिए स्पष्ट सुझाव नहीं दे सका। गतिरोध की स्थिति को देखते हुए यूरोजोन के नेताओं ने ग्रीस को फिर से गुरुवार तक का वक्त दिया है ताकि वो कर्जदाताओं के सामने अपने सुझाव साफ तौर पर रख सके। उम्मीद है कि इस रविवार तक समस्या का कोई ठोस हल निकल जाना चाहिए। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ प्रगति सक्सेना।
यूरोजोन ने ग्रीस को नए प्रस्ताव पेश करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया है, ताकि अपने कर्जदाताओं के साथ उसका एक निश्चित समझौता हो जाए। यूरोजोन के नेताओं की आपातकाल बैठक में ये फैसला लिया गया। अब इस मसले पर पूरे यूरोजोन का सम्मेलन रविवार को होगा। रविवार को यूरोपीय संघ के सारे 28 सदस्यों की बैठक इसी मुद्दे पर होगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने चेतावनी दी है कि ग्रीस के कर संकट को सुलटाने के लिए अब उसके पास सिर्फ 5 दिन हैं, वरना इस स्थिति के दर्दनाक नतीजे होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रीस का दिवालियापन और ग्रीस की बैंकिंग व्यवस्था का पूरी तरह ढह जाना पूरे यूरोप को प्रभावित करेगा।
The situation is really critical and unfortunately we can't exclude this.
डोनाल्ड टस्क कह रहे हैं, स्थिति वाकई बहुत नाजुक है और बदकिस्मती से हम उस संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते कि रविवार तक कोई सहमति ना ही बने, और इसका मतलब ये भी है कि हमें इससे पूरे यूरोपीय संघ पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी बात करनी होगी। यूरोजोन को उम्मीद थी कि ग्रीस आज तक अपने प्रस्ताव पेश कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि स्थिति बहुत अनिश्चित है, लेकिन अब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष जां क्लॉड यूंकर का कहना है कि आयोग किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है।
The commission is prepared for everything. We have a Brexit scenario.
जां क्लॉड यूंकर कह रहे हैं, आयोग हर एक बात के लिए तैयार है। हमने ग्रेग्जिट यानी ग्रीस के यूरोजोन से बाहर जाने की स्थिति के लिए भी तैयारी की है। मानवीय आधार पर मदद देने वाली स्थिति के लिए भी हम तैयार हैं, और यही स्थिति बेहतर है। मैं ग्रीस के यूरोजोन से बाहर होने वाली स्थिति के सख्त खिलाफ हूं, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाऊंगा अगर ग्रीस सरकार वो नहीं करती जो हम उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो ग्रीक जनता के सम्मान को बचाए रखने के लिए करेगी। फ्रांस के राष्ट्रपति पहले से कहते आ रहे हैं कि ये सिर्फ ग्रीस की समस्या नहीं है, इस पर यूरोपीय संघ का भविष्य निर्भर करता है। ग्रीस के प्रधानमंत्री सिप्रास चाहते हैं कि कर संकट का ऐसा हल निकले जो सामाजिक तौर पर न्यायपूर्ण और आर्थिक रूप से व्यवहारिक हो। इटली के प्रधानमंत्री मातियो रेंसी का मानना है कि ग्रीस के संकट का हल यूरोप की एक नई अवधारणा और संरचना को पोषित करेगा, इसीलिए भावी समस्याओं से बचने के लिए वृहद कदम उठाने की जरूरत है।
The real challenge for everyone is build a different idea of Europe.
प्रधानमंत्री रेंसी ने कहा, हम सभी के लिए असली चुनौती है यूरोप की एक नई अवधारणा निर्मित करना, क्योंकि यूरोप में विकास के लिए आदर्शों और मूल्यों को पुख्ता करने के लिए निवेश की जरूरत है। मेरे लिए, इटली की जनता के लिए यही प्राथमिकता है, यूरोप की एक नई अवधारणा में निवेश करना, उस यूरोप के निर्माण में जो विकास आधारित हो, मितव्ययिता आधारित नहीं। ग्रीस के कर्ज संकट का हल वाकई यूरोप में कुछ अहम बातों को तय करेगा, जिनमें खुद यूरोपीय संघ का अस्तित्व भी शामिल है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रविवार तक महीनों से चली आ रही ग्रीस की समस्या का आखिरकार निदान हो ही जाएगा।
तो ग्रीस को मिली एक और मोहलत, यूरोजोन ने कहा कि वो गुरुवार तक अपने प्रस्ताव पेश करे। रुख पाकिस्तान का। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान के प्रतिनिधियों के बीच गुपचुप बातचीत होने की खबर आई है। दोनों ओर से इस मामले में बहुत गोपनीयता बरती जा रही है, लेकिन देर शाम काबुल में एक अफगान अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की। अफगानिस्तान के कई अधिकारी इस बातचीत के लिए इस्लामाबाद में हैं। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने पाकिस्तान में बीबीसी उर्दू संवाददाता हारून रशीद से संपर्क साधा और पूछा कि किस तरह से बातचीत।
अफगान जो डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्रालय के डिप्टी मिनिस्टर हैं हिकमत करजई, वो एक विशेष विमान के जरिए काबुल से इस्लामाबाद आए थे। उनके साथ कोई 9 दीगर अधिकारियों नेताओं की टीम भी है, और इसको काफी खुफिया रखा गया हुआ था, लेकिन शाम काबुल में जो रेजिडेंशियल उनके स्पोक्समैन है उन्होंने इसको कंफर्म किया है कि उनका एक डेलीगेशन पाकिस्तान गया हुआ है तालिबान के साथ बात करने के लिए। दूसरी तरफ तालिबान की जहां तक बात है तो उसके भी इतलात है कि उनकी टीम भी यहां आई हुई है इस्लामाबाद में। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कतर से उनके जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, और बातचीत का सिलसिला अभी शुरू नहीं हुआ है। जो अफगान अधिकारी थे उन्होंने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ कुछ होमवर्क किया है, और उम्मीद है कि आइंदा अगले 24 घंटों में इनका पहला राब्ता होगा और बातचीत का सिलसिला शुरू होगा।
इस बातचीत में किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, मकसद क्या है इस बातचीत का?
देखें, ये दूसरा राउंड है। पहला राउंड अगर आपको याद हो तो इस वर्ष मई में चीन का जो शहर है उरुमची, वहां पर हुआ था पहला राब्ता अफगान सरकार और तालिबान के दरमियान, और वहां पर बैठक हुई थी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि उसका सेकंड राउंड है। तो अभी लगता नहीं है कि कोई ज्यादा डिमांड्स पर या मुद्दों पर बात हुई होगी। अभी होमवर्क ही शायद हो रहा है, और अभी यही तय किया जा रहा है कि किन किन मुद्दों को पहले लिया जाए और किन पे बात बाद में की जाए, जिन पे जल्दी कंसेंसस हो जाएगा उसको पहले लेना है, या जो मुश्किल मसाइल है उनको पहले उठाना है। तो इस तरह की शायद बातें हो रही होंगी। अभी कुछ बताने को भी तैयार नहीं है यहाँ पर अधिकारी, और उनकी कोशिश है, उनका कहना है कि एक दो दिन इंतजार करें, जब ये बातचीत खत्म हो तो उसके बाद ही कुछ सामने आ सकेगा कि किन मुद्दों पर बात हुई।
ये भी कहा जा रहा है कि जो अफगान लोग हैं वो इस बातचीत से लेकर बहुत खुश नहीं है क्योंकि हमले बहुत हो रहे हैं तालिबान के अफगानिस्तान में।
जी, पाकिस्तान ने, अगर आपको याद हो तो इस साल मार्च में अफगान सरकार को ये यकीन दहानी कराई थी कि वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लेकर आएंगे, लेकिन उसमें काफी डिले हुआ, दो तीन महीने लग गए। लेकिन इस दौरान जो इनका स्प्रिंग ऑफेंसिव है तालिबान का, वो काफी तेजी से जारी रहा और काफी शदीद हमले उन्होंने किए। अफगान पार्लियामेंट पर जो लेटेस्ट भी हमला हुआ वो भी उसकी एक कड़ी थी। तो उसकी वजह से लोगों में चिंता तो जरूर है कि एक तरफ पाकिस्तान यकीन दहानी करा रहा था कि बातचीत होगी, लेकिन दूसरी तरफ तो हमलों में इजाफा हो रहा है। तो अब लगता ये है कि तालिबान का भी कोई इस तरह की स्ट्रेटजी लगती है कि शायद बातचीत शुरू करने से पहले वो भी चाह रहे थे कि जितना दबाव अफगान सरकार पर डाल सकें और जितना प्रेशर बना सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी मांगे मनवा सकें। और शायद अब ये जब के मुज़ाकरात बाज़ाब्ता तौर पर शुरू होने जा रहे हैं तो इसके बाद हो सकता है कि इन हमलों में कुछ कमी शायद आए।
पाकिस्तान में अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों और तालिबान के बीच गुपचुप बातचीत, जानकारी दे रहे थे हारून रशीद। आइए रुख भारत का करते हैं। भारत में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह ने कहा है कि भारत के राष्ट्रगान में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जन गण मन अधिनायक की जगह इसे जन गण मनदायक या फिर मंगलदायक किया जाना चाहिए। कल्याण सिंह बतौर कुलाधिपति राजस्थान विश्वविद्यालय के 26वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए थे और लोगों को संबोधित कर रहे थे। खास बात यह थी कि डिग्रियां लेने वालों में बुजुर्गों से लेकर नौजवान तक शामिल थे, क्योंकि विश्वविद्यालय की लेट लतीफी की वजह से 25 साल यानी कि 1990 से लेकर 2014 तक 20 लाख डिग्रियां लंबित थीं। जयपुर से आभा शर्मा की रिपोर्ट।
85 साल के नारायण लाल शर्मा कांकड़ ने पाणिनी पर शोध किया है। मंगलवार को जब कुलाधिपति कल्याण सिंह के हाथों डीलिट की उपाधि मिली तो उनकी खुशी देखते ही बन रही थी। आखिर उन्हें इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।
यद्यपि प्रोविजनल सर्टिफिकेट पूर्व में प्राप्त कर लिया था, परंतु वर्तमान में जिस वातावरण में मौलिक जो ये प्रमाण पत्र मिला उसे अत्यंत मनोमयूर नृत्य कर रहा है।
25 साल तक विश्वविद्यालय की ओर से डिग्रियां नहीं देने के कारण ज्यादातर छात्र मायूस हो चले थे।
भारत भूषण बड़ेसरा और 1993 में मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया था।
तो इतना लंबा इंतजार,
हाँ, हम तो भूल गए थे लेकिन यूनिवर्सिटी ने हमें याद किया, बहुत अच्छा लगा हमें।
मगर समय से मिलता है तो क्या कुछ और बात होती।
हाँ, बहुत अच्छा लगता उस टाइम पे, लेकिन अब भी मिल रहा है तो बच्चे देखेंगे उनको भी अच्छा लगेगा।
डिग्री के लिए इंतजार करने वालों में निधि गोयल भी थी, पर डिग्री मिलने की खुशी में वो सब भूल गई।
मैंने 2005 में एमए सोशियोलॉजी में गोल्ड मेडल रिसीव किया था। 10 साल तो बहुत ही लंबा टेन्योर होता है, अब तो मैं भूल भी गई थी कि मुझे कभी गोल्ड मेडल मिला था। वापस रिवाइव किया मुझे मेरी सारी मेमोरीज को।
गाउन और टोपी को ब्रिटिश संस्कृति का प्रतीक बताते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से विद्यार्थियों को साड़ी ब्लाउज अथवा कुर्ता पायजामा पहनकर आने के लिए कहा गया था। डिग्रियां बांटने के बाद कल्याण सिंह जब भाषण देने आए तो लिखित भाषण पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि जब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गीत लिखा था तब देश पर ब्रिटिश आधिपत्य था। जन गण मन अधिनायक जय है ब्रिटिश राज की प्रशंसा है, इसके स्थान पर जन गण मन मंगलदायक होना चाहिए। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया का भी जिक्र करते हुए कहा कि वे महान नहीं थी बल्कि झांसी की रानी महान थी जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। बहरहाल छात्रों को लंबे इंतजार के बाद डिग्रियाँ मिली हैं। राज्यपाल के बयान से ज़्यादा उन्हें इस वक्त डिग्रियों की चमक ज़्यादा लुभा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन डिग्रियों में इस बार विशेष सुरक्षा फीचर और बार कोड भी डाला है ताकि इनका दुरुपयोग ना हो सके। अब नए छात्र यही उम्मीद कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन भविष्य में उनके धैर्य की भी ऐसी परीक्षा ना ले। जयपुर से आभा शर्मा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने व्यापम घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है। नियुक्तियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से जुड़े इस घोटाले में हाल के दिनों में कई लोगों की मौत के मामले सामने आए, जिससे कि राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भारी दबाव बना और एक पत्रकार की मौत के बाद सरकार पर और दबाव बढ़ गया था। हर बड़े कांड के बाद सीबीआई की जांच की मांग होती है, लेकिन जांच एजेंसियां कई मामलों में खरा उतरने में नाकाम रहती हैं। दूसरी ओर सीबीआई पर सरकार के दबाव में आने का आरोप लगता है। तो क्या सीबीआई व्यापम घोटाले और इससे संबंधित संदिग्ध हत्याकांडों की गुत्थी सुलझा पाएगी? हमारे सहयोगी जुबैर अहमद ने सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन से फोन करके यही पूछा।
देखिए, सीबीआई में कैपेसिटी तो है, सीबीआई सेपरेट टीम बना के ओवरऑल किसी सुपीरियर स्पेशल डायरेक्टर के अंडर रख के ये इन्वेस्टिगेशन सॉल्व कर सकती है, पर आजकल सीबीआई पर लोगों का भरोसा चला गया क्योंकि सिन्हा साहब के अंदर इन्वेस्टिगेशन जा रही है, एपी सिंह के खिलाफ चार्जेस हुए, यूपीएससी से हटाए गए, ये कभी पहले तो होता नहीं था। डायरेक्टर से मैंने हाई इंटीग्रिटी, जो बनाई है मेथड ऑफ सिलेक्शन, इसमें कुछ गड़बड़ है। मैं ये नहीं मानता कि सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कोई कोर्ट मॉनिटर करे।
ऐसा क्यों?
क्योंकि सीबीआई में अपने प्रोफेशनल से कोर्ट को प्रोसिक्यूशन ट्रायल समझ में आती है, कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन समझ में नहीं आती। देखिए, ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन मिलते हैं ट्रायल के टाइम। अब आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलिए और सीबीआई के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट का जज काम करने दें, तभी ठीक हो सकता है। इसलिए सीबीआई के ऊपर केस दे देना चाहिए, सीबीआई को बिना इन्फ्लुएंस इन्वेस्टिगेशन करने देना चाहिए। सीबीआई इज एन ओपन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अगर सीबीआई किसी को अरेस्ट करती है तो उसके बारे में सीबीआई को फॉर्टनाइटली ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट देनी पड़ती है कि क्या प्रोग्रेस हो रहा है। उस टाइम कोई भी प्रोसिक्यूटर या कोई भी जो इंटरेस्टेड पार्टी वो वॉच कर सकती है, और सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में अगर कमियां पाती है तो उसको सीबीआई के सामने रख सकती है। बॉम्बे ब्लास्ट सीबीआई ने विदाउट सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग, इतना बड़ा केस था, द बिगेस्ट ट्रायल इन ever occurring in CBS, over 133 लोग के अरेस्ट हुए और सारी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के अपने टीम की 18 चार्जशीट डाले, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कहाँ थी?
ये तो एक हो गई आइडियल सिचुएशन, जो आप भी जानते हैं कि पहले के अफसर दबंग होते थे, अब वह प्रेशर में आ जाते हैं और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी बहुत बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2-2.5 साल पहले एक ऑब्जर्वेशन किया था सीबीआई के बारे में कि ये एक ऐसे तोते की तरह है जो पिंजरे में बंद है। ऑब्वियसली
सीबीआई को केज पैरेट कहा गया है, कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा गया है, करप्ट ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहा गया है। ये इसीलिए कहा गया है कि सीबीआई के डायरेक्टर्स ठीक नहीं लगे। आप 98 के पहले की बात सोचिए, कभी भी किसी सीबीआई डायरेक्टर पर चार्ज आया था?
ये थे सीबीआई के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर शांतनु सेन और उनसे बात कर रहे थे जुबैर अहमद। कार्यक्रम में अब बात अखबारों की करेंगे, अखबारों का रुख करते हैं। प्रगति अखबार पढ़ चुकी हैं, बताइए क्या सिर्फ व्यापम की चर्चा है या कुछ और भी है?
देखिए, सारे अखबारों में पहली खबर तो व्यापम की ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के लिए राजी हो गए हैं और उन्होंने हाईकोर्ट को
बड़ी मुश्किल से
वो दिन रात भर सो नहीं पाए, एक अखबार में इसका भी, दैनिक भास्कर में इसका भी जिक्र है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों को आरटीआई में लाने की अर्जी दी है एक गैर सरकारी संस्थान ने, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने। श्रीनगर के लोगों को इफ्तार पार्टी दे सकते हैं मोदी। पीएमओ जो है वो इसकी तैयारी कर रहा है कि 17 जुलाई को मोदी जो हैं जम्मू जाएंगे, तो हो सकता है वहाँ से वो श्रीनगर जाएं और लोगों को इफ्तार पार्टी दें। एक दुखद खबर ये है कि सीने पर गेंद लगने से श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं बावलन प्रथमनाथन, उनकी मौत हो गई है। तुर्की एयरलाइंस विमान की जो इमरजेंसी लैंडिंग हुई दिल्ली में बम की जो होक्स की खबर से, उस ये खबर भी सारे अखबारों में है। इसके अलावा फिल्म अभिनेता शाहिद कपूर की शादी अखबारों में छापी,
उसकी फोटो छपी है।
जी बिल्कुल, रंग बिरंगी तस्वीरों के साथ। इनके अलावा, इन खबरों के अलावा, ललित मोदी के लिए पद्म अवार्ड की सिफारिश हुई थी, ये खबर दैनिक भास्कर में है। और भाभा एटॉमिक सेंटर की सुरक्षा में सेंध, ये भी दैनिक भास्कर में है खबर। अमर उजाला ने एक दिलचस्प खबर कवर किया है, कुमाऊं में पहली बार दिखा हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है वो लुप्त होने की कगार पर है, लेकिन उसकी तस्वीर भी छापी गई है इसमें। जनसत्ता में एक खबर है कि आरुषि कांड में फैसले की शुरुआती पन्ने जज के बेटे ने टाइप किए थे। ये दरअसल अभिरुख सेन की एक नई किताब आई है आरुषि करके, वो आरुषि हत्याकांड के मामले में है। तो उसके अलावा संघ का आंदोलन रोकने में वसुंधरा सरकार नाकाम रही है। राजस्थान में मंदिर, प्राचीन मंदिर तोड़े गए उसके खिलाफ संघ का एक अभियान चला था।
बहुत 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 शुक्रिया प्रगति। बिहार की बात करेंगे। बिहार का एक गांव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT की नर्सरी के रूप में सामने आया है। बिहार का एक गांव गया शहर के मानपुर पटवा टोली में पिछले 2.5 दशक से हर साल बड़ी तादाद में छात्र IIT की प्रवेश परीक्षा में सफल हो रहे हैं। मुश्किल से आधा किलोमीटर की परिधि में बसे इस गाँव की सफलता की कहानी सुनिए मनीषा डिल्ले से।
महात्मा बुद्ध की नगरी गया शहर का मानपुर पटवा टोली करीब 1,500 बुनकर परिवारों की बस्ती है। यहाँ की तंग गलियों से गुजरते पावर लूम के ठक ठक का शोर लगातार कानों से टकराता रहता है। हाल के दिनों में यह एक बार फिर चर्चा में रहा है क्योंकि इस साल यहाँ से 17 स्टूडेंट IIT के लिए चुने गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि यह कोई पहली बार हुआ हो। श्री दुर्गा जी पटवाए जातीय सुधार समिति के सभापति गोपाल पटवा बताते हैं,
इसका सफर 1992 में शुरू हुआ था जितेंद्र प्रसाद के रूप में, और उनके निकलने के बाद जो है एक गजब की क्रांति पटवा टोली में आई। आज के डेट में लगभग 150 से अधिक IIT NIT या और उच्च संस्थाओं में लड़के जो है परीक्षा पास करके और करीब करीब 18 देश में जॉब कर रहे हैं।
यहाँ के लोगों के मुताबिक मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह ने यह मोहल्ला बसाया था। मानसिंह गया से जयपुर वापस जाने लगे तो कुछ बुनकर यहीं रह गए। 90 के दशक के आसपास तक यहाँ का मुख्य पेशा बुनकरी ही बना रहा, लेकिन इसी दौरान आई मंदी के बाद बुनकर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने पर भी ज्यादा ध्यान देने लगे। पटवा टोली से सबसे पहले डॉक्टर बनने वाले सीताराम प्रसाद उस दौर को कुछ इस तरह याद करते हैं।
एक समय ऐसा आया जब मिल का कपड़ा का ज़्यादा प्रचलन हुआ और बिजली का यहाँ पर बहुत ज़्यादा संकट आया, जिसके कारण यहाँ का रोज़गार जो था वो बहुत मंदा आ गया। और उस मंदी के ये में जब लोगों के घर में कोई काम नहीं था तो लोग थोड़ा पढ़ाई की ओर झुके।
सबसे पहले 1992 में यहाँ के जितेंद्र प्रसाद IIT पहुँचने में सफल रहे। पढ़ाई पूरी करने के बाद जितेंद्र नौकरी करने बहुतेरे भारतीयों के ड्रीम डेस्टिनेशन अमेरिका भी पहुँचे। जितेंद्र की सफलता से जो माहौल बना उसे बनाए रखने और आगे बढ़ाने के लिए पटवा समाज आगे आया। अभी पटवा टोली में सामुदायिक रूप से 5 स्टडी सेंटर चल रहे हैं। यहाँ के बच्चों की सफलता के पीछे उनकी काबिलियत और मेहनत के साथ साथ ऐसे सेंटर्स का भी अहम योगदान है। इस साल IIT में सफल रहे एक छात्र विकास कुमार भी इसकी तस्दीक करते हैं।
ग्रुप स्टडी में हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हम उसकी मदद कर दिया, अगर मुझे कभी प्रॉब्लम हुई तो वो हमारी मदद कर देता है। पढ़ने में एक थोड़ा सा रुचि बढ़ जाती है। ग्रुप स्टडीज के लिए तो जो अच्छे घरानों के लोग हैं वो हमें जो है घर मुहैया करा देते हैं, रूम दे देते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की व्यवस्था करा देते हैं, उन्हीं सब का लाभ उठा के हम लोग पढ़ाई करते हैं।
साल 2000 में जितेंद्र प्रसाद की पहल पर नवप्रयास बना था, तब से इस बैनर तले इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्र तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन कर रहे हैं। नवप्रयास के आकाश कुमार ने बताया,
इसमें कंपटीशंस का मतलब माहौल बनाया जाता है, एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाता है और बच्चों ग्रुप स्टडी होती है, वर्कशॉप वगैरह भी कराते हैं उनके लिए। ट्रांजिशन वर्कशॉप शुरू किए थे इस साल ही, तो उसमें 10th से 11th में जो भी गए उनके लिए सिलेबस जो वास्ट हो जाता है उसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोगों ने एक वर्कशॉप चलाया था।
आज पटवा टोली के इंजीनियर्स माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैमसंग, जूनिपर नेटवर्क्स, हिंदुस्तान एयरोनॉटिकल लिमिटेड जैसे प्रमुख देसी विदेशी कंपनियों में काम कर रहे हैं। इस साल तो यहाँ के पीताम्बर कुमार UPSC की मुख्य परीक्षा में भी सफल रहे हैं। पीताम्बर पटवा टोली के उन 3 प्रतियोगियों में शामिल थे जो इस साल इस परीक्षा के इंटरव्यू राउंड तक पहुंचे थे। ऐसे में अब यहां के लोगों की ख्वाहिश है कि आने वाले सालों में पटवा टोली IIT विलेज के साथ साथ IES विलेज के रूप में भी जाना जाए। मनीष सांडिल, पटवा टोली, गया।
तो ये है आईआईटी की नर्सरी। और कार्यक्रम में अब बात उन खबरों की जिन पर रहेगी आज हमारी नजर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रूस के शहर उफा पहुंचेंगे, जहां आज से ब्रिक्स देशों और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सम्मेलन शुरू होने वाला है। इस सम्मेलन के दौरान संभावना है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात करें। लंदन ट्यूब के 20,000 कामगार आज रात से एक दिन की हड़ताल पर चले जाएंगे। इससे पहले लंदन अंडरग्राउंड के प्रबंधन और चार मजदूर संघों के प्रतिनिधियों की बातचीत नाकाम रही। ये बातचीत ट्यूब की नई रात्रि सेवा शुरू करने और वेतन में बढ़ोतरी पर हो रही थी। यूरोजोन के नेताओं को उम्मीद है कि ग्रीस आज आर्थिक सुधार और बजट के नए सुझाव पेश करेगा, ताकि वह यूरोजोन से बाहर होने और अर्थव्यवस्था के पूरी तरह से ढहने से बच सके। ग्रीस को नए सुझाव प्रस्तुत करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री जॉर्ज ऑसबॉर्न आज देश का बजट पेश करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि वे समाज कल्याण खर्च में कटौती की गति को थोड़ा धीमा करने की योजना भी प्रस्तुत करेंगे। वियना में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ईरान और दुनिया के 6 बड़े देशों के बीच चल रही बातचीत अब 10 जुलाई तक जारी रहेगी। इस बीच दोनों पक्षों ने अंतिम समझौता होने की उम्मीद जताई है।
और कार्यक्रम में अब विंबलडन की खबरें।
विंबलडन 2015, दिन भर के खेल का लेखा जोखा।
विंबलडन पर लंदन से बीबीसी हिंदी सेवा की विशेष प्रस्तुति में स्वागत है आपका। मैं हूं अपूर्व कृष्ण। विंबलडन में कल 8वें दिन के खेल में सबसे बड़ी उत्सुकता थी नोवाक जोकोविच के मैच को लेकर। सोमवार को दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन के खिलाफ मैच का 5वां और निर्णायक सेट अंधेरे के कारण पूरा नहीं हो सका था। कल ये मैच पूरा हुआ। आखिरकार 4.25 घंटे तक चला ये मैच जोकोविच जीतने में कामयाब रहे। उन्होंने मैच 6-7, 6-7, 6-1, 6-4, 7-5 से जीता। मैच के बाद उन्होंने कहा,
Definitely one of the toughest, considering the opponent's high quality.
निश्चित तौर पर यह मेरे बेहद मुश्किल मैचों में से एक था। विरोधी खिलाड़ी के उच्च कोटि के खेल को संभाल पाने में मुझे कठिनाई हो रही थी। 2 सेट हारने के बाद मैच में वापस आना और जीतने की कोशिश करना, इससे मुझे काफी संतोष मिल रहा है और साथ ही आगे के मैचों के लिए मेरी हिम्मत भी बढ़ी है। नोवाक जोकोविच के शब्द, जो अब सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और वहां उनका मुकाबला यूएस ओपन विजेता क्रोएशिया के मारिन चिलिच से होगा। कल मुख्य रूप से महिलाओं के क्वार्टर फाइनल के मैच हुए और अब सरीना विलियम्स, मारिया शारापोवा, एग्नियेंश्का राद्वांस्का और गार्बीन मुगुरुथा ब्लांको सेमीफाइनल मैच खेलेंगी। टॉप सीड सरीना विलियम्स एक कदम और आगे बढ़ गई हैं। कल एक शानदार क्वार्टर फाइनल में उन्होंने पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को हराया। सरीना पहला सेट 3-6 से हार गई थी, मगर फिर उन्होंने अगले दोनों सेट 6-2, 6-3 से जीतकर सेमीफाइनल में स्थान पक्का किया। वहां सरीना की टक्कर होगी 2004 की विंबलडन चैंपियन मारिया शारापोवा से। कल सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए मारिया शारापोवा को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। रूसी खिलाड़ी के सामने थी 47वीं सीड की अमेरिका की खिलाड़ी कोको वांडवे। दूसरा सेट हारने के बाद शारापोवा दबाव में दिखने लगी थी, मगर फिर उन्होंने वापसी की और मैच 6-3, 6-7, 6-2 से जीत लिया। विंबलडन में महिलाओं का दूसरा सेमीफाइनल होगा 13वीं सीड की पोलैंड की एग्नियेश्का राद्वांस्का और 20वीं सीड की स्पेन की गार्बिन मुगुरुथा ब्लांको के बीच। राद्वांस्का ने अमेरिका की मैडिसन कीज को और गार्बिन मुगुरुथा ब्लांको ने स्विट्जरलैंड की टिमिया बाशिंस्की को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत के लिए कल का दिन बहुत सफल रहा, पर इनमें सबसे बड़ी जीत रही रोहन बोपन्ना की, जिन्होंने फ्रांस के जोड़ीदार फ्लोरिन मिर्जा के साथ डबल्स में दुनिया की पहले नंबर की जोड़ी अमेरिका के बॉब ब्रायन और माइक ब्रायन को हराया। और अब बोपन्ना विंबलडन में पहली बार डबल्स का सेमीफाइनल खेलेंगे। वहीं लिएंडर पेस और सानिया मिर्जा दोनों खिलाड़ी अपने जोड़ीदारों के साथ मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। अपूर्व कृष्ण, बीबीसी विंबलडन।
और कार्यक्रम में से पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से।
बीबीसी समाचार। ब्रसेल्स में यूरोजोन के नेताओं की बैठक में ग्रीस को कर्ज संकट से उबरने का नया प्रस्ताव पेश करने के लिए गुरुवार तक का समय दिया गया है। यमन में 2 कार बम विस्फोटों में कम 5 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति ओबामा ने आज व्हाइट हाउस में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख से मुलाकात की है। 20 साल पहले दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य होने के बाद दोनों देशों के नेताओं की ऐसी पहली मुलाकात थी। दुनिया की सबसे बड़ी क्रूज जहाजरानी कंपनी कार्निवल कॉर्प का कहना है कि उसे क्यूबा से मायामी तक समुद्री यात्रा ऑफर करने के लिए अमरीकी सरकार की स्वीकृति मिल गई है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में नवनिर्वाचित वामपंथी परिषद ने घोषणा की है कि वो उन अनेक मार्गों के नाम बदल देगी जिनका नामकरण पूर्व सैन्य शासक जनरल फ्रांसिस्को फ्रांको की स्मृति में किया गया था। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे दीपक जसरोटिया। अगले कार्यक्रम यानी कि विश्व भारती में आपसे फिर मुलाकात होने वाली है। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।